Sit. Janina pura ganga chari. Janina pura ganga chari. Janina pura ganga Jana Bali Lata Giri Lata Bari Jara Dhamma Dhaja Kunja Bihari Jati Jana Bali Lata Giri Lata Bari Jai Bharanita, Jai Bharanita, Bharanita, Jai Bharanita.
जय विष्णुपाद परमहंसवर विराजकाचार्य अष्टोत्तर षट्शिष्यमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय होम ज्ञान शलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। रहने दीजिए, जो जहाँ पे बैठे हैं बैठे रहे, बाकी के लिए बाहर जगह है, बहुत बाहर भी स्क्रीन लगा है और आप लोग वहाँ पर बड़े आराम से कुर्सी पर बैठकर देख सकते हैं, तो जो लोग देर से आए वे लोग बाहर बैठ सकते हैं। आप सबके बड़े आभारी हैं कि आप सब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस गौर पूर्णिमा मनाने के लिए आए हैं। इस समय में बहुत से लोग अपने आप को अवतार घोषित करते हैं। भारत में हम सब जानते हैं राम कृष्ण इत्यादि, लेकिन कई बार ऐसे नाम सुनते हैं जिनको हमने पहले कभी सुना नहीं है और फिर लोग उनको भगवान कहते हैं, अवतार मानते हैं। इसी प्रकार जो भगवान होते हैं कभी कभी लोग उनको संत मान लेते हैं, साधु मान लेते हैं, कोई विशेष व्यक्ति मान लेते हैं लेकिन भगवान नहीं मानते, तो दोनों बातें हैं। एक तरफ किसी व्यक्ति को भगवान मान लिया जाता है और दूसरी तरफ जो भगवान है उनको साधु या संत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये दोनों गलत हैं। हमें जानना चाहिए अवतार कौन है, किन्हें अवतार कहा जाता है और भगवान कौन है। साधारण व्यक्ति कभी भगवान नहीं बन सकता, ये बहुत स्पष्ट बात है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि जिसके द्वारा कोई भगवान बन जाए, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसको जीतकर कोई भगवान बन जाए, क्योंकि भगवान कोई पद नहीं है। अगर ये बात हम समझ जाएं तो हम जान जाएंगे कि कोई भगवान बन नहीं सकता, क्योंकि बनने का अर्थ है कि कोई उस पद तक पहुंच सके। लेकिन भगवान तो कोई पद नहीं है, भगवान भगवान है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये पद हैं। आज कोई और है, थोड़े समय बाद कोई और आ जाएंगे, तो ये पद हैं। इसीलिए आप में से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, भगवान नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि भगवान पद नहीं है। तो जैसे लोग भगवान को साधारण व्यक्ति, साधु संत मानते हैं, इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत से स्थानों में संत कहकर, बंगाल के एक संत कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कोई संत नहीं है, कोई भक्त नहीं है, वो तो भगवान है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि क्योंकि आप अर्थात हम उनको भगवान मानते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं वो भगवान है। आप किसी और को भगवान मानेंगे, आप कहेंगे वो भगवान है। तो क्या केवल किसी के मानने से कोई भगवान हो जाता है? किसी ने साधु माना तो वो साधु हो गए, किसी ने भगवान माना तो क्या वो भगवान हो गए? नहीं। हम किसी को भगवान कब मानते हैं? शास्त्रों के आधार पर। हम किसी को भगवान कब मानते हैं? जब उनकी कार्यों को अति मानवीय देखते हैं। भगवान के कार्यों में बहुत से कार्य भगवान ऐसे करते हैं जो अति मानवीय हैं, साधारण मानव के लिए संभव नहीं है। जैसे श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने समुद्र के ऊपर एक पुल बना दिया, ये कोई मानव के लिए संभव है? इतना बड़ा पुल, 800 मील लंबा, 80 मील चौड़ा, और केवल पत्थरों से, और कोई बहुत कई साल नहीं लगे। ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल कोई ब्रिज बनना शुरू होता है, 2-3 साल में केवल 1-2 किलोमीटर का ब्रिज बनता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत जल्दी। तो इसको अति मानवीय कार्य कहते। श्री कृष्ण आए, उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून के ऊपर सारा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। बताइए, है कोई ऐसा वेट लिफ्टर जो ऐसा कर सकता है? आजकल के हमारे वेट लिफ्टर वो 200-300 किलो उठा लेते हैं, तो बस ऐसा होता है कि अगर 5 सेकंड और पकड़े रहेंगे तो जान निकल जाएगी। हाँ, ऐसा है, वो उठाते हैं, पकड़ कर रखते हैं, और उनका मुंह देखना चाहिए उस समय कि अगर और 5 सेकंड तक पकड़े रहे तो निश्चित मृत्यु हो जाएगी। और वो कितना होता है? 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो। गोवर्धन पर्वत आज जब वो छोटा हो गया है, उसकी एक परिक्रमा करने के लिए 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, और उसको भगवान ने अपने छोटे से उंगली पे, नाखून पर उठा लिया। नख ऊपर गोवर्धन धारो, नाम परो गिरधारी। ये अति मानवीय कार्य है। अब अगर कोई अपने आप को भगवान कहे तो उसको कहना चाहिए जाकर गोवर्धन उठाओ, चलो दोनों हाथों पर उठा लो। संभव नहीं है, तो शास्त्रों का आधार चाहिए। श्री रामचंद्र जी का वर्णन शास्त्र में है, श्री कृष्ण का वर्णन शास्त्र में है, जितने भी भगवान के अवतार नरसिंह देव वराह वामन सबका वर्णन शास्त्र में है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भी शास्त्र में है। तो अगर हम किसी को भगवान मानना चाहते हैं तो शास्त्र के आधार पर मानना चाहिए। क्या कहीं लिखा है किसी पुराण में, किसी वेद में, किसी उपनिषद में, तब उन्हें भगवान मानना चाहिए। नहीं तो आजकल भारत वैसे भी बड़ी उपजाऊ भूमि है, खास करके भगवानों के लिए। हर गली में भगवान उत्पन्न हो रहे हैं। जो व्यक्ति थोड़ा सा प्रसिद्ध हो जाता है अपने आप को भगवान घोषित कर देता है। और मूर्खता लोगों की भी इतनी है कि वो उनको स्वीकार करते हैं। तो इसलिए शास्त्र का आधार। तो क्या शास्त्र में कहीं ये कहा गया है कि भगवान है चैतन्य महाप्रभु? अगर नहीं तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, संत हैं, एक बंगाल के अच्छे भक्त हैं, या फिर उन्होंने कोई अति मानवीय कार्य किया, अगर नहीं तो फिर मान लेना चाहिए कि नहीं। अवतारों में बहुत सारे लक्षण होते हैं। भगवान जब आते हैं तो उनके चरण चिन्हों पर विशेष चिन्ह होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब आए तो उनके दोनों चरणों में 19 चिन्ह थे। ये भगवान है। अब अगर आपको कोई कहे कि मैं भगवान हूं, उसके दोनों पांव उठाकर देखिएगा नीचे से कि कहीं कुछ चिन्ह है या नहीं। अगर नहीं है मैं छोड़िएगा नहीं, गिर जाएंगे। ऐसे है जी, बोले छोड़ दीजिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। भगवान नहीं है इसलिए चोट लग जाएगी। तो कुछ चिन्ह होते हैं। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु, इनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, गरुड़ पुराण में। अब देखिए ये पुराण कब लिखे गए, 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इनको लिखित रूप में दिया। वैसे तो लाखों सालों से हैं ये पुराण, और इनको किसी ने बनाया नहीं है। ये तो भगवान की वाणी है, वेद शास्त्र इत्यादि। तो 5000 साल पहले जब व्यास देव ने पुराणों की रचना की तो गरुड़ पुराण, अन्य कई पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, सब में वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु का। तो गरुड़ पुराण में वर्णन करते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं, अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। ये 5000 साल पहले लिख दिया गया। चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे, वो आने वाले थे, लेकिन शास्त्रों में वर्णन कर दिया गया। अहम पूर्ण भविष्यामि, ये घोषणा की भगवान ने, अहम मैं पूर्णो अपने पूर्ण रूप में भविष्यामि आऊंगा, आई नहीं है, आऊंगा। अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः, विशेष युग संध्या में, संध्या अर्थात एक युग समाप्त हो रहा है और दूसरा प्रारंभ हो रहा है, उसको संध्या कहते हैं। तो युग संध्या विशेषतः, विशेष युग संध्या में, अर्थात उस विशेष युग संध्या में जब श्री कृष्ण आए हैं। तो श्री कृष्ण आते हैं द्वापर युग में, द्वापर युग समाप्त हो रहा है, कलयुग प्रारंभ हो रहा है, उसको विशेष संध्या कहते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण हर द्वापर युग में नहीं आते। अब आपको आश्चर्य होगा, ये हर द्वापर युग क्या है? क्या बहुत सारे कलयुग होते हैं, बहुत सारे द्वापर युग होते हैं? हां, ये चक्र है। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं ना कि अरे रामचंद्र जी पहले आए थे, आप कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहे हैं? रामचंद्र जी बड़े भगवान हैं, कृष्ण छोटे भगवान हैं। नहीं, ये चक्र है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सतयुग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता आता है, फिर कली आता है। लेकिन विशेष समय में ये बदल जाता है। पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर की जगह त्रेता आता है, और फिर द्वापर आता है क्योंकि उसमें श्री कृष्ण आते हैं, और इसीलिए ये विशेष है। तो युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे, मायापुर नवद्वीप में भविष्यामि, बनूंगा, आऊंगा। कैसे? शची सुतः, शची माता के पुत्र के रूप में। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनकी माता शची देवी बनी। तो ये घोषणा हजारों साल पहले गरुड़ पुराण में की गई है, और ऐसे कई पुराण हैं। जैसे पद्म पुराण में लिखा गया है, कले प्रथम संध्यायाम गौरंगे तन्मही तले, भागीरथे तटे रम्ये भविष्यामि शचीसुतः। तो उसमें लिखा गया है कि कलह प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या में जब कलयुग प्रारंभ होगा, गौरांग गौतम महीतले, महीतले यानी पृथ्वी पर, गौरांग महाप्रभु के रूप में, और कहां आएंगे? भागीरथे तटे, गंगा के तट पर, भविष्यामि शचीसुतः। तो देखिए, ये तो हमने केवल आपको दो उदाहरण दिए हैं। महाभारत में भी वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का। महाभारत का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सुवर्ण वर्ण ही मांगो वरंगास चंदनांगदी, संन्यास कृत क्षम शांत निष्ठ शांति परायण। तो वहां बड़ा स्पष्ट वर्णन है, ये महाभारत का श्लोक है, जिसमें क्या कहा गया है, सुवर्ण वर्ण हे मांगो। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनका वर्ण सुवर्ण था, तो सुवर्ण वर्ण हे मांगो। संन्यास कृत, संन्यास लेने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो इसलिए शास्त्रों ने बहुत से स्थानों पर, नारद पुराण में, अथर्व वेद में, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया गया है, और इस आधार पर हम उन्हें भगवान मानते हैं। ये कोई हमारी भावुकता नहीं है, ये कोई हमारे सोच विचार नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, ऐसा शास्त्रों में घोषणा की गई है। और जब वो आते हैं तो युग धर्म की स्थापना करने। भगवान के अवतारों में कई प्रकार के अवतार हैं। कुछ अवतार सृष्टि की रचना करते हैं, उन्हें पुरुष अवतार कहते हैं। कुछ अवतार केवल लीला करते हैं, उनको लीला अवतार कहते हैं। कुछ अवतार युग धर्म की स्थापना करते हैं, उनको युगा अवतार कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु युग धर्म की स्थापना करने आए। और चैतन्य महाप्रभु क्या केवल अवतार हैं या वही कृष्ण हैं? इसका भी वर्णन शास्त्र में किया गया है, गोलोकम च परित्यज्य, वहां लिखा गया है कि गोलोक को छोड़कर मैं आऊंगा। तो गोलोक में कौन रहते हैं? श्री कृष्ण। तो स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं, और आज का दिवस उनके आविर्भाव का दिवस है। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उनका मूल उद्देश्य था लोगों को इस कलयुग के युग धर्म को प्रदान करना। जब चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म देना है तो उन्होंने सोचा कि भगवान के रूप में नहीं, भक्त रूपिणः, भक्त के रूप में देना चाहिए, ताकि मैं सिखला सकूं कि भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए। तो इसीलिए वो भक्त के रूप में आए। प्रहलाद महाराज ने भी भागवत में इनका वर्णन किया है, चैतन्य महाप्रभु का। तो इसलिए कई स्थानों पर वर्णन हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, उस समय सारे भारत में भक्ति का वातावरण नहीं था, लोग भक्ति को भूल रहे थे, गलत गलत तरीके से भक्ति कर रहे थे, अपने मन से भक्ति कर रहे थे। और ऐसे समय में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। पूर्णिमा का दिवस था, लेकिन उस समय चंद्र ग्रहण हो गया, जिस दिवस पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले थे, और सारे लोग आप जानते हैं चंद्र ग्रहण के बाद भारत में ये प्रथा है कि पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। तो चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ, लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया और हरि हरि कह रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो जब सारा भारत पवित्र नदियों में स्नान करके हरि हरि कह रहा था, ये वो समय था जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अर्थात उन्होंने अपने जन्म से ही ये दिखला दिया कि उनके कार्य क्या हैं। वो ये चाहते हैं कि सब भगवान का नाम लें। तो चैतन्य महाप्रभु की काफी लीलाएं हैं, आज समय नहीं है, थोड़ा सा हम लोग देर से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, इसलिए एक आध लीला ही कहेंगे और फिर चैतन्य महाप्रभु के मूल उद्देश्य का वर्णन करेंगे। एक बहुत सुंदर लीला है, हमने सोचा था बहुत सारी लीलाओं को कहेंगे लेकिन एक लीला को कहना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु छोटे से बालक थे, एक समय उनके पिता जगन्नाथ मिश्र के घर में एक ब्राह्मण आए और जगन्नाथ मिश्र ने बहुत स्वागत किया। जो सभ्य लोग होते हैं वो भक्तों का, ब्राह्मणों का बड़ा स्वागत करते हैं। ये ब्राह्मण बड़े विशेष थे, इनकी खुद की शालिग्राम शिला थी और वे खुद भोग बनाकर शालिग्राम को ऑफर करते थे, भोग लगाते थे और उसी को खाते थे, दूसरे किसी के हाथ का नहीं खाते थे, कुछ और नहीं खाते थे। तो जगन्नाथ मिश्र के घर आए, उन्होंने सारा सामान दिया, ये लीजिए चावल, ये लीजिए दाल, आप बनाइए, आप भोग लगाइए और आप खाइए। तो ये ब्राह्मण ने बड़ी अच्छी तरह से भोग बनाया भगवान के लिए, शालिग्राम शिला के सामने रखा, भोग रखा और उसने आंख बंद की और भगवान का स्मरण करने लगा, भगवान को बुलाने लगा कि भगवान आइए, कृपया भोग स्वीकार कीजिए। और जैसे ही उसने आंख खोली तो देखा ये छोटा सा बालक निमाय चैतन्य महाप्रभु ये आके आराम से राइस खा रहे, दाल खा रहे, चावल खा रहे। तो ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया, जोर से चिल्लाने लगा, हाय हाय ये क्या कर दिया, ये तो सब दूषित हो गया, भगवान के लिए था ये बच्चा खा गया। तो जगन्नाथ मिश्र ने सुना, जल्दी भाग कर आए, क्या हुआ? तो देखा अरे ये बच्चे ने खा लिया। तो जगन्नाथ मिश्र लकड़ी ली मारने के लिए भागे तो ब्राह्मण ने रोका, रहे अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ये तो छोटा बालक है, अब नहीं समझ है, ठीक है रहने दीजिए, शायद भगवान की इच्छा नहीं होगी, आप एक काम कीजिए मुझे कुछ फल फूल दे दीजिए, फल दे दीजिए, मैं वही खाकर आज संतुष्ट हो जाऊंगा। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरे घर आए और भूखे रह जाएं। तो उन्होंने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, मैं इसको कमरे में बंद करता हूं, लेकिन आपसे प्रार्थना है एक बार और आप भोग बनाइए। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, आप कुछ फल दे दीजिए, मैं बस वही खा लूंगा। तो जगन्नाथ मिश्र कहने लगे नहीं क्षमा कीजिए, आप बनाइए, मैं और लाके देता हूं आपको चावल, आप बनाइए। तो ब्राह्मण ने सोचा ठीक है, अभी इतना कह रहे दुखी नहीं करना चाहिए। तो फिर से चावल लिए, फिर से दाल लिया, सब बनाया पूरा भोग, अब रखा सामने शालिग्राम शिला के, फिर से आंखें बंद की, भगवान को बुलाया कि आइए भोग लीजिए। और जैसे आंखें खोली तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहां पर, वही बालक, और बड़े आराम से खा रहे हैं प्रसन्नता से। अब तो ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आया, पिछली बार तो ठीक था, गलती कर दी, इस बार तो जोर से चिल्लाए, हाय हाय ये क्या हुआ। तो फिर से जगन्नाथ मिश्र आ गए, अरे अरे क्या हुआ, देखा तो फिर वही खा रहे, बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इसको तो मैंने बंद कर दिया था, ये आया कैसे वापस। तो उन्होंने फिर से उसको ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। तो ब्राह्मण ने कहा भगवान की बिल्कुल इच्छा नहीं है, आज मैं उपवास करूंगा, फल भी नहीं खाऊंगा। जगन्नाथ मिश्र ने कहा आप ऐसा करेंगे तो मुझे पाप लगेगा, आप मेरे घर आए और भूखे रहेंगे, लोग क्या कहेंगे, भगवान क्या सोचेंगे, मुझे बड़ा पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा आप कुछ भी कहो मैं नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, चरण फिरे, प्रार्थना की हाथ जोड़ के, आप विश्वास रखिए इस बार इसको बांध कर रखूंगा, आएगा नहीं ये, बट आप कृपया करके भोग बनाइए। तो ब्राह्मण ने कहा ये करते करते रात हो गई, बनाना फिर ऑफर करना फिर बना, अब रात हो गई है, अंधेरा हो गया। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, फिर से बनाया। और जब ब्राह्मण बना रहे तो समय हो गया, जगन्नाथ मिश्र जाकर सो गए, सब सो गए, 12 बज गए रात को। अब ब्राह्मण बना रहे हैं और जगन्नाथ मिश्र ने बड़ी अच्छी तरह से अंदर बंद करके रखा कि कहीं ये बाहर नहीं निकल आए। ब्राह्मण ने भोग बनाया, शालिग्राम शिला के सामने रखा है, तीसरी बार था। आप सोचिए बेचारा एक तो भूखा सुबह से, ऊपर से दो बार वही खा गए, अब तीसरी बार उसने प्रार्थना की भगवान से कि कृपया आप भोग स्वीकार कीजिए। आंख खोली, चैतन्य महाप्रभु सामने फिर खा रहे हैं। अब गलती नहीं थी, वही बुला रहा था बार बार, चैतन्य महाप्रभु को बार बार भगवान को बुलाता था, वो आकर खा रहे, क्या गलती है, तो वो फिर खा रहे। अब तो ब्राह्मण से रहा नहीं गया, पहली बार तो उसने कंट्रोल कर लिया था, थोड़ा बहुत सहन कर लिया, अब उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय अब कभी इस घर में नहीं आऊंगा, ये कैसा घर है, ब्राह्मणों का घर है लेकिन कोई शिक्षा नहीं है। तो अब जगन्नाथ मिश्र तो बहुत दुखी हो गए, ये क्या हो गए। लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उससे पहले कि जगन्नाथ मिश्र वहां आए, उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, कह रहे तुम दुखी क्यों होते हो, तुम ही तो मुझे बार बार बुला रहे हो, तुम बुला रहे हो मैं आकर खा रहा हूं, फिर दुखी क्यों हो रहे हो। तो उसको समझ नहीं आया कि अरे ये क्या कह रहा है, एक छोटा सा बालक इतनी बात कर रहा है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको दर्शन दिए अपने भगवान के रूप में और उससे कहा कि तो जब मैं नंद बाबा क्या मैंने जब जन्म लिया था तब भी तुम वहां आए थे ब्राह्मण के रूप में और तब भी मैंने ऐसे ही तुम्हारे साथ आचरण किया था, तुम्हें याद नहीं है। और जब उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के रूप में देखा तो फिर बहुत संतुष्ट हो गया, उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं किसको डांट रहा था, वो बार बार कह रहा था ये बालक कहाँ है, कौन है ये, लेकिन उसको बहुत दुख हुआ। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो ये बात किसी को कहना नहीं, अब तुम यहां से जाओ, लेकिन मैंने तुम्हारा भोग बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, संतुष्टि से स्वीकार किया है। तो उस समय ब्राह्मण ने प्रणाम किया। अब वो जाने को हुआ तो जगन्नाथ मिश्र आ गए, तो उन्होंने पूछा अब क्या हुआ, आपका भोग भगवान ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा हाँ चिंता नहीं करो, भोग अब भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कई लीलाएं की, बचपन में बहुत लीलाएं ऐसी करते थे। एक बार उनकी मां ने उनको कुछ खाने के लिए दिया, चावल इत्यादि, और चैतन्य महाप्रभु उसको छोड़कर मिट्टी खाने लगे। तो मां ने आके पूछा रे तुमको चावल दिया तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने मुझे मिट्टी खाने को ही तो दी है, ये जो चावल है किससे बनते हैं, मिट्टी से ही बनते हैं, तो मिट्टी का ही तो रूपांतरण है ना चावल, तो मिट्टी का रूपांतरण खाने से अच्छा मैंने मिट्टी खा ली। तो शची माता सोचने लगी ये छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कहां से कह रहा है कि सब कुछ तो मिट्टी ही है, और सही बात भी है ना, आता तो चावल कहां से, मिट्टी से ही आता है। तो उन्होंने समझाया कि देखो मिट्टी से मटका बनता है, अब अगर मुझे पानी लाना है तो मैं मटके में ला सकती हूँ, मिट्टी में ला सकती हूँ क्या। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए मिट्टी नहीं खाना। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हुई, अभी हम लीलाओं की चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को पूरा करने के लिए 24 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक भिक्षुक एक भिखारी बन सकते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया। वामन देव आए थे, उन्होंने भी भिक्षा मांगी, लेकिन उन्होंने भिक्षा मांगी अपने ही भक्त से, बलि महाराज से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किसी सीमा को नहीं रखा। चैतन्य महाप्रभु ने भिक्षा मांगी हर एक से, पापियों से, अधर्मियों से, और क्या भिक्षा मांगी, कोई धन नहीं मांगा, एक ही भिक्षा मांगी। उन्होंने आदेश दिया सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास अमर अज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश प्रति घर घर दिया कर भिक्षा बोलो कृष्ण बजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बस एक ही भिक्षा मांगी, हर घर में जाओ, दरवाजा खटखटाओ, और जब वो लोग दरवाजा खोले और पूछे क्या चाहिए, तो बोलो भिक्षा चाहिए। तो क्या भिक्षा चाहिए? केवल आप कृष्ण का नाम लीजिए, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, बस यही भिक्षा चाहिए और कुछ नहीं। तो देखिए, भगवान भिक्षुक बन जाते हैं लोगों का उद्धार करने के लिए। ऐसे पापियों के पास गए, अधर्मियों के पास गए, जाकर उनको बताया आप कृष्ण का नाम लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण था कि वो हम सबको एक सरल मार्ग दे सके भक्ति का। कौन सा सरल मार्ग? केवल भगवान के नाम के उच्चारण से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल नाम उच्चारण से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकें। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्या केवल नाम उच्चारण से मुक्ति प्राप्त हो सकती है? क्या भगवान की प्राप्ति केवल नाम से हो जाएगी? हमने तो सुना है ऋषि मुनियों को बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, फिर केवल नाम से। हाँ, केवल नाम से, क्योंकि कलयुग में हमारी शक्ति नहीं है कि हम जाकर हिमालय में 2000 वर्ष तक तपस्या करें। कलयुग में शक्ति नहीं है कि हम बड़े बड़े यज्ञ करें। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, कृतयध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखये द्वापरे परिचर्याया कलौ तत् हरि कीर्तनात्। जो लाभ बहुत बड़ी तपस्या करने से सतयुग में मिलता था, जो लाभ बड़े बड़े यज्ञ करने से त्रेता युग में मिलता था, जो लाभ हमें बहुत विस्तार से बड़े ऐश्वर्य से विग्रह सेवा करने का द्वापर में मिलता था, वो केवल हरि नाम, भगवान के नाम से इस युग में मिल जाता है। और इसी को सुखदेव गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवत में कहा, कले दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा। हे राजन, ये जो कलयुग है ये दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक महान गुण है, और वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगह परम ब्रजेत। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत समझाते समय इस बात को कहते हैं कि हे परीक्षित, इतना जान लो कि कलयुग दोषों का सागर है। और हम लोग देखते हैं लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, विश्वास नहीं है। उस बच्ची को नीचे उतारिए प्रभुपाद के, थोड़ा बच्चों को संभालना चाहिए, ये ऐसे अपराध नहीं करें। अभी अभी हम बता रहे थे कि बच्चे को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन माँ बाप को ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बच्चों को संभाल कर रखिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस युग धर्म को देने आए, तो कैसे केवल हरि नाम से हम लोग मुक्त हो सकते हैं? इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हम देते हैं। एक माचिस की तीली होती है, उसमें थोड़ा सा ऊपर कुछ लाल लगा होता है, कोई अगर उसको देखे तो क्या पता चलता है उसमें आग है या नहीं है, लेकिन उसको अगर सही जगह पर उसको घर्षण किया जाए तो तुरंत अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति हम सबके हृदय में है, और हरि नाम के द्वारा जब थोड़ा सा घर्षण होता है तो बड़े आसानी से सरलता से वो भक्ति प्रकट हो जाती। तो आज के दिवस पर आप लोग जब यहां पर आए हैं तो आप सबसे विनती है कि जिस चीज को देने के लिए स्वयं भगवान एक भिक्षुक बने, स्वयं भगवान एक भक्त बने, एक भक्त के रूप में आए, उस चीज को स्वीकार कीजिए, भगवान का नाम। इस युग में कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान का नाम। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आपका आना इस मंदिर में आज के दिवस पर सफल होगा। अगर आप सब आज से प्रण लें कि हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, जैसे हम लोग माला पर करते हैं, तो भगवान के नाम के उच्चारण से ही हम चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, और उसी के द्वारा हम भगवान की आराधना सही रूप में कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आज के दिवस पर प्रकट हुए अपनी करुणा बरसाने के लिए, और उन्होंने करुणा ये की कि पात्र अपात्र ना देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन पात्र है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, हरेक को उन्होंने भगवान का नाम दिया। तो इसीलिए ये जो ज्ञान, ये जो नाम, ये भक्ति का मार्ग जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, इसको आप स्वीकार कीजिए और इस हरि नाम के द्वारा अपने जीवन को सफल कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी के एकाध कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में या भक्ति के विषय में, हरि नाम के विषय में, ताकि आपकी शंका दूर हो और आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। कोई प्रश्न है किसी के, कोई जिज्ञासा मन? कोई प्रश्न किसी के? ठीक है, तो फिर अभी आरती होगी भगवान की, और उससे पहले कुछ सूचनाएं हैं, आपको कुछ सूचनाएं देंगे और फिर भगवान की आरती होगी और फिर सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने के कारण जो प्रसाद हम लोग आज ग्रहण करते हैं वो एकादशी का प्रसाद होता है। तो ये नियम है कि जब जैसे कृष्ण आए तो जन्माष्टमी के दिन एकादशी प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके अगले दिन हम लोग फीस्ट करते हैं, उत्सव मनाते हैं, और उसमें बहुत अच्छा प्रसाद होता है। वैसे एकादशी का भी प्रसाद अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन तो आज हम लोग एकादशी का करेंगे और कल के उत्सव में, कल उत्सव होता है, जैसे भगवान का जन्म हुआ तो कल उत्सव होगा, तो कल फिर यहाँ पर हम लोग आपके लिए फीस्ट की व्यवस्था कर रहे हैं प्रसाद की। तो आप सबसे विनती है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए ताकि हम सब भगवान के इस उत्सव को बड़े अच्छी तरह मना सकें। तो जैसे आज यहाँ उत्सव शुरू हुआ, वैसे ही कल भी 6:30 बजे से कीर्तन प्रारंभ होगा, प्रवचन होगा। कल थोड़ा विस्तार से भगवान की लीला को कह सकेंगे अगर आप सब समय पर आए। आज तो समय बहुत कम था इसलिए हम ज़्यादा कह नहीं सके, तो कल वर्णन करेंगे। तो कल समय पर आइए और फिर रात को यहाँ पर आप सबके लिए हम लोग प्रसाद की भी व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप सब कृपया कल भी समय पर आइए। कल हम कार्यक्रम समय पर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सब समय पर आए तो 8 बजे तक प्रवचन समाप्त होगा और 8:30 बजे आप लोग प्रसाद ले सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण महानंद संघ के इस कारोबार केंद्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए और इस पूरे आयोजन का लाभ उठाया और बड़े ही ध्यानपूर्वक आपने कथाओं को भी सुना, तो आप सभी का अभिनंदन करेंगे 3 बार हरी बोल बोल के, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। आज का दिवस जैसा कि आपको पता है श्री गौरांग महाप्रभु जी का अभिलाव दिवस है। श्री गौरांग महाप्रभु की, तो ऐसा ही प्रोग्राम कल भी है जैसा कि प्रभु जी ने बताया। अभी कल भी प्रोग्राम 6:30 बजे से शुरू होगा, तो आप सभी से निवेदन है कल भी आइए, अच्छे अच्छी संख्या में कल भी आइए। अपने आसपास के जो भी संबंधी हैं, जो भी आपके मित्रगण हैं, सभी को इसकी सूचना दीजिए। बहुत ही भव्य आयोजन कल भी होगा। और साथ साथ में एक और सूचना है आप सभी के लिए कि इसी महीने की 9 तारीख से, यानी कि मंडे से महाभारत की कथा शुरू होने जा रही है हमारे मंदिर में।
सोमवार, हिंदी में सोमवार कहते हैं,
हिंदी में सोमवार, 9th को जो सोमवार है उस दिन महाभारत की कथा शुरू होने जा रही है। ये शाम को 6:30 बजे से होगी, ये प्रति सोमवार को होगी हर एक सप्ताह में। तो आप सभी से निवेदन है उसमें आइए और उसको सफल बनाने में हमारा मदद कीजिए, योगदान कीजिए। अभी हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं उन उदार हृदय दानियों का जिन्होंने अनुदान दिया और उनके सहयोग से ये जो पूरा आयोजन है सफल हो पाया। तो उनको हम एक एक करके बुलाना चाहेंगे यहाँ पर, जिससे वो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके प्रेम में भेंट के रूप में। तो सबसे पहले नए जो वस्त्र भगवान को बनवाया गया उसका अनुदान गुप्त दान है, तो इनको हम बुलाने पड़ेंगे।
जिन भक्त ने ये दिया है वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम बताया जाए, वो भगवान की सेवा कर चुके हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि आप सबको पता चले, तो इसीलिए उनके नाम को हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सब उनके लिए 3 बार हरि बोल कह सकते हैं।
हरि बोल, हरि बोल, हरि।
भले ही उन्होंने गुप्त रूप से नाम दिया हो पर हमने खुले रूप से उनके लिए आशीर्वाद मांगा है। तो आज दूसरे जो प्रसादम है, प्रसादम आज का प्रसादम स्पॉन्सर किया है श्री प्रशांत वरणेकर जी और श्री रवि वरणेकर जी ने, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कृपया यहाँ पर आए
उनके परिवार से,
उनके परिवार जिन कोई हो यहाँ पर वो आ सकते हैं।
पिताजी पीछे खड़े हैं, बाकी लोग कोई हो
पिताजी।
अच्छा, बाकी अनाउंसमेंट करो।
और अभिषेकम के लिए जो सहयोग किया वो श्रीमती शुकम सुमन पकेकर माता जी ने किया, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कृपया यहाँ पर आइए। और जिन भक्त ने इस फ्लावर डेकोरेशन में मदद की, आप देख रहे हैं बड़ा सुंदर पुष्पों से सजा रखा है पूरे मंदिर को, जिन्होंने इसमें मदद की हम उनको भी यहाँ पर बुलाना चाहते हैं जिससे भगवान का आशीर्वाद वो स्वीकार करें। श्री संजीव वारणेकर जी और मिस बुधिया मंजरी, तो कृपया करके यहाँ पर आइए और अपना प्रेरणा उपहार स्वीकार कीजिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा।
इन सभी उदार हृदय दानियों का, अनुदानियों का हम बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इन्होंने बड़े ही कम समय में सारा अनुदान दिया।
वेजनेकर परिवार से माता जी बैठे हैं, वेजनेकर परिवार से वो आ सकते हैं लेने के लिए, गिफ्ट दे दो माता जी। प्रशांत हाँ, माता जी अपने पुत्रों के लिए सबके लिए एक साथ ले लेंगे। कोई माता जी वहां से आ जाए
कृपया, कोई माता जी वहां से आ जाए।
ये हम लोग वैसे एक देते हैं लेकिन इनको सारे देने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और ऐसे ही जो कथाएं हैं भगवान के चरित्र के ऊपर, उनकी लीलाओं के ऊपर, ये कथाएं हर रविवार को यहाँ इस मंदिर में होती है संडे प्रोग्राम के रूप में। तो ये प्रोग्राम हर रविवार को होता है हर सप्ताह 12:30 से 2 बजे दोपहर में, तो आप सभी उसमें आ सकते हैं, आपको सादर आमंत्रण है। आप सभी अपने मित्रों के साथ परिवार के साथ उसमें आइए। 12:30 बजे कीर्तन होता है, फिर 1 बजे से प्रवचन स्टार्ट होगा, प्रवचन के बाद 2 बजे के बाद प्रसाद की व्यवस्था है। तो आप सभी लोग उसमें कृपया करके भाग लीजिए और भगवान की कथाओं का लाभ उठाइए। अभी इस सप्ताह राम कथा चल रही है, भगवान राम के चरित्र के ऊपर कथाएं चल रही हैं, तो कृपया आप लोग हर रविवार को आइए और इन कथाओं का लाभ उठाइए। और अभी कीर्तन करके भगवान को वेलकम करेंगे, उसके बाद आरती होगी, फिर आरती के बाद प्रसाद की व्यवस्था सभी भक्तों के लिए है। महाभारत कथा के भी पैम्पलेट्स यहाँ पर हैं, तो आप में से जो भी भक्त उसको लेके जाना चाहें और अपने संबंधियों तक पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। प्रचार के माध्यम से इस भगवान की कथा का आप लोग फायदा उठा सकते हैं और सब तक पहुंचा भी सकते हैं। तो पुनः आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और इतने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद दर्शन आरती और फिर प्रसादम।
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
हरे राम राम हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.